Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. इस उपनिषद के छह प्रकरणों में से चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है। इस प्रकरण के प्रथम कंडिका में आचार्य पिपलाद जी से ऋषि गार्गे ने पांच प्रश्न किए हैं अलग अलग। इससे त्वम पदार्थ शोधन हो रहा है। तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान का कारणभूत त्वम पदार्थ का सम्यक ज्ञान कराने के उद्देश्य से यह प्रकरण प्रारंभ हुआ है। इसलिए जिससे तत्वमसी वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ का सम्यक बोध हो, ऐसा विचार यह चतुर्थ प्रकरण है। तो इसमें प्रश्न त्वम पदार्थ के शोधन अनुकूल ही होंगे। तो प्रथम प्रश्न से गार्गे ने पूछा कि जागृत अवस्था किसका धर्म है, आत्मा का धर्म है या अनात्मा का धर्म है। कार्यक्रम संघात है अनात्मा, और इस कार्यक्रम संघात अंतःपाती ही जो अनेक तत्व हैं उनमें से कुछ तत्व विशेषों का जागृत अवस्था धर्म होगा। वे तत्व जागृत अवस्था के आश्रय होंगे या आत्मा की स्वाभाविक ये अवस्था है जागृत अवस्था। यदि स्वाभाविक होगी तो आत्मा तो हुआ जागृत अवस्था रूपी धर्म वाला, और तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ हुआ जागृत अवस्था से रहित, तो वो जगता नहीं है। तो जगने वाले यानी जागृत अवस्था के आश्रयभूत जीवात्मा का कैसे जागृत अवस्था का अनाश्रय ब्रह्म के साथ अभेद हो पाएगा। और तत्वमसी वाक्य कह रहा है कि आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए मानना होगा कि ये जागृत अवस्था आत्मा की स्वाभाविक नहीं है, आत्मा के उपाधि की अवस्था है। और आत्मा की उपाधियां हैं ये बाह्य करण, आत्मा की अनेक उपाधियां हैं, उनमें से कौन से उपाधि की अवस्था ये जागृत अवस्था धर्म मानी जाएगी। तो कहा कि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो दस इंद्रिया हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया, इन्हीं की यह जागृत अवस्था धर्म है। और इन इंद्रियों के साथ संसर्ग होने से इंद्रियों का धर्म रूपा अवस्था का आरोप इंद्रिय संश्लिष्ट आत्मा में होता है। वस्तुतः आत्मा जागृत अवस्था का धर्मी नहीं है, आश्रय नहीं है। इसे प्रथम प्रश्न तथा उसके उत्तरात्मक द्वितीय कंडिका से सुनिश्चित किया। आचार्य ने बताया, गार्गे ने तो पूछा था जागृत अवस्था अनात्मा का धर्म है कि आत्मा का धर्म है। तो आचार्य पिपलाद जी ने बताया अनात्मा का ही धर्म है और उपाधिभूत अनात्मा में भी बाह्य इंद्रिया रूपी जो अनात्म उपाधि है उसका यह धर्म है जागृत अवस्था, आत्मा में आरोपित होता है, आत्मा वस्तुतः उससे रहित है। द्वितीय प्रश्न है कि कानि जागृति, इस कार्यक्रम संघात में कितने तत्व हैं, कौन तत्व हैं जो जगते हैं। जगते हैं का अर्थ है कभी भी अपने कार्य से छुट्टी नहीं लेते हैं, हमेशा कार्यरत ही रहते हैं, कार्य से उपरत नहीं होते हैं। वे इस कार्यक्रम संघात में कौन है, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा करना किसका धर्म है। आत्मा स्वयं अपनी सुरक्षा करता है, ये शरीर की सुरक्षा आत्मा करता है, या आत्मा की उपाधि में से कोई न कोई तत्व करता है। तीनों अवस्था में शरीर संरक्षण किसका धर्म है, तो इसका उत्तर देने के लिए तृतीय कंडिका है। तो तृतीय कंडिका का विचार आज होना है। तृतीय और चतुर्थ इन दो कंडिकाओं के द्वारा दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। शरीर सुरक्षा अवस्था त्रय में अनात्मा का धर्म है कि आत्मा का धर्म है, इस संशय का निवर्तक निर्णय इन दो कंडिकाओं के द्वारा बताया जाएगा। तो तृतीय कंडिका है प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवा एषो अपानो व्यानो अन्वाहर्य पचनो यद् गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आह्वनीयः प्राण। तो द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी गार्ग्य से कह रहे हैं कि हे गार्ग्य, ऐसा संबोधन द्वितीय कंडिका से इस तृतीय कंडिका में भी ले आना। तो हे गार्ग्य, अस्मिन् पुरे, एतस्मिन् पुरे का मतलब ये जो पूर के तरह पूर है शरीर, यह नगर के तरह नगर है, पूर कहते हैं नगर को, और नगर में प्रवेश करने के लिए अनेक द्वार होते हैं। तो इस शरीर में भी प्रवेश करने के लिए तथा शरीर से निकलने के लिए बताए गए नवद्वार, गीता में नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, ये नवद्वार वाला पूर है ये शरीर, और इस शरीर रूपी पूर में नगर में देही शब्दित आत्मा रहती है। कैसे रहती है, तो न कुर्वन् न कारयन्, न कुछ करता है न कुछ कराता है, मतलब निर्विकार रूप से रहता है इस शरीर में। कौन, आत्मा। गीता ने बताया कि नौ द्वार वाला यह पूर के तरह पूर है शरीर, और इस शरीर के अंदर पांच प्राण हैं, अलग अलग गोलकों में अवस्थित। प्राण की ही अलग अलग पांच वृत्तियों को पांच प्राण कहा जाता है। और तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए उनका स्थान भी बताया गया था अध्यात्म में, अपान नाम की प्राणवृत्ति वायु उपस्थ में रहती है, चक्षु श्रोत्र में प्राण रहता है, तो नाभि में समान रहता है, समस्त नाड़ियों में व्यान रहता है, और सुषुम्ना नाड़ी में उदान। ये पांच प्राण है ना, इन पांचों प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा जा रहा है कि प्राण अग्नय, प्राण अग्नि के तरह अग्नियां हैं। और ये पांच अग्नि के तरह अग्नि रूप प्राण ही क्या करते हैं, तो जागृति का मतलब जगते हैं, और जगने का अर्थ है निरंतर व्यापार से युक्त रहना, व्यापार रत रहना। न तो उनको दिन में मात्र आठ घंटे की ड्यूटी नहीं है, प्राणों की 24 घंटे की ड्यूटी है, और संडे और सैटरडे की भी छुट्टी नहीं है, वीकली एक भी छुट्टी नहीं, और ऐसे पूरे फुल टाइम वो छुट्टी कभी लेते ही नहीं है। हनुमान जी के तरह वो फुल टाइम सेवक है आपके, ये प्राण बॉडीगार्ड, कब आपको कोई नुकसान पहुंचा दे इसके लिए इन बॉडीगार्डों की ड्यूटी बदलती भी नहीं, हमेशा इन्हीं की ड्यूटी है। जब से इस संसार में आने से पहले माता के गर्भ से ही सबसे पहले प्राण ही शरीर में अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं ना, इसलिए तब से जब तक इस शरीर से उत्क्रमण नहीं होता पूरा, तब तक ये प्राण आपकी सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं आजीवन। जैसे हनुमान जी कहते हैं राम काज किए बिनु मुहे का विश्राम, तो राम का कार्य संपन्न किए बिना हमें कहां विश्राम है, ऐसे आपका कार्य, आपकी सुरक्षा, यही प्राणों का एक कार्य है, वो विश्राम नहीं लेते इसको करने के लिए। भगवान ने कहा जब तक इस शरीर में रह करके पूर्ण रूप से यह जीवात्मा अपने प्रारब्ध का फलोपभोग अच्छी तरह से नहीं करता, तब तक उसके इस भोगायतन शरीर की सुरक्षा करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं। ये ईश्वर ने प्राण को आज्ञा दी है, और प्राण ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक है, ये इसलिए आपके भोगायतन शरीर की सुरक्षा करता रहता है। प्राण तीनों अवस्था में कभी छुट्टी नहीं लेता, इसलिए कहा कि प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, इस कार्यक्रम संघात में ये अग्नि के तरह अग्नि स्थानीय पांचों प्राण अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब इनको अग्नि कहा, तो अग्नि शब्द का प्राणों के लिए गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं। अग्नि शब्द का मुख्यार्थ प्राण नहीं है, गौण, जैसे कहा जाता है सिंहो मानवक, यह मानवक यानी मनुष्य का बच्चा तो सिंह के तरह है, का मतलब निडर है, सूरवीर है, अपना कार्य जैसा सिंह करता है निडर होकर के ऐसा कार्य संपन्न करता है, तो उसे सिंह के जो गुण होते हैं वे गुण जिस मनुष्य में दिखते हैं उसे कहा जाता है ये तो सिंह है, निडर है। ऐसे ही सिंह शब्द जैसे मनुष्य के लिए गौण है यानी सिंहगत गुणों को लेकर के प्रयुक्त होता है, सब मनुष्यों को सिंह नहीं कहा जाता, सिंह के गुण जिस मनुष्य में है उसे, ऐसे अग्नि का सादृश्य प्राणों में होने से प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा जा रहा है। वो सादृश्य क्या है, तो यहां सादृश्य बताया जा रहा है, समानता बताई जा रही है अग्नि की प्राणों में। जो अग्निहोत्री हुआ करते हैं उनके यहां तीन अग्नियां होती हैं, उनके अलग अलग तीन नाम होते हैं अग्नियों के, अग्निहोत्री के यहां। एक गर्भपत्य अग्नि होता है, एक दक्षिणाग्नि होता है और एक आहवनी अग्नि होता है। ये गर्भपत्य अग्नि निरंतर जलता ही रहता है, कभी बुझता नहीं है। अग्निहोत्री के यहां ये अग्नि हमेशा प्रकट रहता है। तो ये तीन अग्नियां अग्निहोत्री के यहां जैसे निरंतर रहती है, ऐसे ये जो पांच प्राण है इनमें से तीन प्राणों को इन तीन अग्नियों के तरह अग्नि के रूप में बताया जा रहा है। पहले अपान नाम का जो प्राण है उसे बताया जा रहा है गर्भपत्य अग्नि के तरह। तो ये कहते हैं कि गर्भपत्यो हवा येषो अपान, येषः अपान, यानी ये जो अपान नाम की प्राण वृत्ति है उसे कहा जाता है गर्भपत्य के तरह गर्भपत्य। अपान को गर्भपत्य क्यों कहते हैं? तो अग्निहोत्री जब प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र करना होता है, रोज सुबह दो आहुतियां और सायंकाल दो आहुतियां अग्निहोत्र में अग्निहोत्री देता है और वो आहवनीय अग्नि में डाली जाती है, गर्भपत्य अग्नि में नहीं आहुतियां। तो इसके लिए आहवनीय अग्नि का गर्भपत्य अग्नि से प्रणयन किया जाता है। प्रणयन कहते हैं, गर्भपत्य अग्नि तो निरंतर जलता रहता है ना, वहां से हवन कुंड में जो अग्नि लाया जाता है उसे कहा जाता है आहवनीय अग्नि, जिसमें आहुति देनी है। आहुति का प्रक्षेप जिस अग्नि में किया जाता है उस अग्नि का नाम है आहवनीय अग्नि। और वो कहां से लाया जाता है? गर्भपत्य अग्नि से हवन कुंड में आहवनीय अग्नि को ला करके स्थापित किया जाता है। तो प्रणयन कहते हैं वो लाने को, ले जाने को। गर्भपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि को ले जाया जा रहा है, इसलिए गर्भपत्य अग्नि का एक नाम है प्रणयन। प्रणीयते आहवनीयो अस्मात् इति प्रणयः, ऐसी प्रणय शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रणय शब्द का अर्थ होता है जिस अग्नि से गर्भपत्य अग्नि को अग्निहोत्री ले जाता है, आहवनीय अग्नि को ले जाता है हवन कुंड में स्थापित करने के लिए, इसलिए गर्भपत्य अग्नि को प्रणयन इस नाम से कहा जाता है। इस कंडिका में भी गर्भपत्य अग्नि का एक प्रणयन विशेषण दिया है, वो है अंतिम वाक्य में, बीच में व्यानो अनवाहर पचन एक वाक्य है, इसके बाद जो वाक्य आता है कि यत गर्भपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात्, इसमें गर्भपत्यात् का विशेषण है प्रणयनात्, और प्रणयन ये गर्भपत्य अग्नि का विशेषण होने से उस प्रणयन का अर्थ निकलेगा जिस अग्नि से आहवनीय अग्नि को ले जाया जाता है वह अग्नि गर्भपत्य अग्नि, और उससे आहवनीय अग्नि को ले जाता है अग्निहोत्री, जिस कारण से उस कारण से माना जाता है गर्भपत्य अग्नि और ये मुख्य प्राण की वृत्ति मानी जाती है। अंदर से बाहर जो निकल रहा है वायु, उसे प्राण कहा जाता है। और बाहर से आप अंदर ले जाते हैं जिस वायु को, वो अपान है। तो अपान अंदर गया और प्राण बाहर निकल रहा है का अर्थ है कि ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वो अपान का, अपान से ही प्राण का प्रणयन हो रहा है। अपान है अंदर गई हुई वायु और उससे ही प्रणयन किया जा रहा है प्राण का।